नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चर्चा का जवाब देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका से निर्वासित भारतीय नागरिकों के मुद्दे पर राज्यसभा में बयान दिया, कहा वापसी की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं। प्रयागराज में आज आयोजित जनजातीय युवा कुंभ में देश भर से 8,000 से अधिक जनजातीय युवा हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी डाक सेवा ने चीन और हांगकांग से आने वाले पार्सलों पर रोक लगाने के फैसले को वापस लिया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने नागपुर में भारत के खिलाफ पहले वनडे में बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में चर्चा फिर शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं, जिनमें कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की समृद्धि शामिल है। चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि गरीबों, महिलाओं और किसानों का कल्याण करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने इस साल के बजट में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट की भी सराहना की। चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज शाम राज्यसभा में चर्चा का जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। दो दिन पहले ही लोकसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर आज राज्यसभा में बयान दिया। राज्यसभा में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीयों को अमेरिका से भेजे जाने की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी लोग वापस भेजे जाते रहे हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत किया गया है। इसे भारत के विरुद्ध कार्रवाई नहीं समझा जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्ष 2009 में 734 लोगों और 2024 में 1368 लोगों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अमरीकी प्रशासन के संपर्क में है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारतीय नागरिकों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। इससे पहले अमेरिका से भारतीय नागरिकों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 12 बजे फिर से शुरू होने के बाद विपक्षी दलों ने नारेबाजी शुरू कर दी और विरोध जारी रखा। ये सदस्य सदन के बीचों बीच पहुंच गए और इस मुद्दे पर बहस की मांग करने लगे। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज अमेरिका से भारतीय नागरिकों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये प्रदर्शन अमेरिका द्वारा भारतीयों को वापस भेजे जाने के तरीके के विरोध में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास अपने देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजने का कानूनी अधिकार है, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो स्वीकार्य नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश से बाहर पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनका कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों से स्वदेश लौटे विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और जवाबदेही का रवैया रखती है।
The government carefully monitors the number of students in all foreign countries. We also carefully monitor their welfare. Wherever there is a situation of any tension or likelihood of violence, we alert students as we had done in Ukraine. Where there is a requirement for us to take any further steps, like running a flight to for their rescue or any other situation like that, we are prepared. We always have contingency.
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सरकार संघर्ष वाले देशों से सैकड़ों छात्र छात्राओं को स्वदेश लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेडिकल के छात्रों और छात्राओं को अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है और प्रायोगिक परीक्षाओं की सुविधा भारत में ही उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने कहा है कि डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के बढ़ते अपराध से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में 270 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के 6,699 मामले और वित्त वर्ष 2023-24 में 1,470 करोड़ से अधिक राशि के 29,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी के खतरे से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें बैंकों को इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड भुगतान जैसे विभिन्न भुगतान चैनलों के लिए सुरक्षा नियंत्रण के एक सामान्य न्यूनतम मानक को लागू करने का निर्देश दिया गया है। श्री चौधरी ने यह भी कहा कि यूपीआई लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मोबाइल नंबरों और उपकरणों के बीच डिवाइस बाइंडिंग, पिन के माध्यम से दो कारक प्रमाणीकरण, दैनिक लेनदेन की सीमा और उपयोग के मामलों पर सीमाएं निर्धारित की हैं और अंकुश लगाया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार ने देश के जनजातीय गांवों और बस्तियों में संचार के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर प्रमुखता से ध्यान दिया है। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 25,000 गांवों और बस्तियों में संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 के तहत युवा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें देश भर से 8,000 से अधिक आदिवासी युवा भाग ले रहे हैं।
बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। इसी के तहत 5 दिनों तक चलने वाले जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य जनजाति मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि दुनिया में जितने भी बदलाव हुए हैं वह युवाओं के कारण हुए हैं। उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करें।
पर्दे के पीछे से जो समाज को विभ्रमित करने वाली राष्ट्र धर्म संस्कृति विरोधी शक्तियां हैं उनको पहचानने की आवश्यकता है। पहचान कर हमको सामाजिक समरसता और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हमको सामूहिक रूप से अपने विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम प्रयत्न करने की आवश्यकता है।
इस कार्यक्रम के दौरान सभी जनजाति युवाओं ने जनजाति संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रदेशों के 25 युवाओं को सम्मानित किया जाएगा जो जनजातीय समाज के लोगों के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इस जनजाति सांस्कृतिक समागम के दौरान देश भर के 120 सांस्कृतिक नृत्य दल अपनी प्रस्तुति देंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल हुए शांतिपूर्ण मतदान के बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। निर्वाचन आयोग और पुलिस अधिकारी इनकी निगरानी में तैनात हैं। वोटों की गिनती के लिए 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 70 सीटों के लिए 699 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला शनिवार को होगा। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण 8 एपिसोड के एक नए प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस महीने की 10 तारीख को आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कार्यक्रम के नए प्रारूप में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और अपने अनुभव तथा ज्ञान साझा करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न स्कूलों से किया गया है। परीक्षा पे चर्चा की पहली कड़ी में प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनल और शिक्षा तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में NH-43 पर आज 2 ट्रकों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में 3 महिलाएं हैं। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर में 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 410 अंक गिरकर 77,862 पर कारोबार कर रहा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी लगभग 50 अंक गिरकर 23,567 पर आ गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी डाक सेवा USPS ने बड़े व्यापारिक व्यवधानों की आशंका के बाद चीन और हांगकांग से आने वाले पार्सलों को रोकने का अपना निर्णय वापस ले लिया है। मीडिया की खबरों के अनुसार चीन और हांगकांग से आने वाले पैकेज को रोकने का निर्णय अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर लगाए गए शुल्क का परिणाम था। इन शुल्कों के अलावा ट्रंप ने कम मूल्य के पैकेज के लिए शुल्क मुक्त छूट में भी कटौती की है। ये पैकेज अधिकतर चीन के ऑनलाइन खुदरा कारोबारियों से आते हैं। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID ने घोषणा की है कि प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त सभी कर्मचारी विश्वभर में प्रशासनिक अवकाश पर भेजे जाएंगे। इस एजेंसी का विलय विदेश विभाग के साथ करने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों के बाद ये निर्णय लिया गया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि विदेशों में कार्यरत USAID के कर्मचारियों को वापस बुलाने की योजना है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के आंकड़ों के अनुसार USAID को 10,000 से अधिक कर्मचारी हैं। इनमें से 2/3 हिस्सा 60 से अधिक देशों और क्षेत्रीय मिशनों में विदेशों में कार्यरत है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला नागपुर में जारी है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा इस मैच से एकदिवसीय क्रिकेट में पदार्पण कर रहे हैं। विराट कोहली को घुटने की चोट के कारण विश्राम दिया गया है। और अब कुछ अन्य खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
विश्व टेबल टेनिस सिंगापुर स्मैश के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त पुरुष डबल्स जोड़ी मानव ठक्कर और मानुष शाह का सामना चौथी वरीयता प्राप्त फ्रांसीसी जोड़ी फ्लोरियन बोरासॉड और एस्टेबन डॉर से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय जोड़ी ने कल हांगकांग के वान चुंग तिंग और यी क्वान तो पर 3-0 की शानदार जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। इधर मुंबई ओपन टेनिस के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत की प्रार्थना थोम्बरे और नीदरलैंड्स की एरियन हार्टोनो की जोड़ी का सामना जापान की नाओ हिबिनी तथा जॉर्जिया की ओक्साना कलानिश्कोवा की जोड़ी के साथ होगा। महिला सिंगल्स में आज कई अन्य भारतीय खिलाड़ी भी अपनी चुनौती पेश करेंगी। अंकिता रैना का सामना कनाडा की रेबेका मेरिनो से और शिवल्ली रश्मिका भामिदीपति का सामना सर्बिया की अलेक्जेंड्रा क्रुनिक से होगा। वहीं माया राजेश्वरन रेवती कजाकिस्तान की जरीना दियास के साथ खेलेंगी। और इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल में आज गोवा में FC गोवा का सामना ओडिशा FC से होगा। ये मैच शाम 7:30 से शुरू होगा।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को पुलिस की मौजूदगी में कल रात उग्र भीड़ ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह संग्रहालय बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का निजी आवास था। प्रदर्शनकारी भीड़ ने कल रात 8:30 बजे सबसे पहले संग्रहालय में तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तोड़फोड़ और आगजनी घंटों तक जारी रही। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुमसेन रॉय ने बताया कि अगले 2 दिनों में अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में गरज के साथ तेज वर्षा की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम प्रस्ताव का जवाब देंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका से निर्वासित भारतीय नागरिकों पर राज्यसभा में वक्तव्य में कहा, ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किया गया है। प्रयागराज में आज आयोजित जनजातीय युवा कुंभ में देश भर से 8,000 से अधिक जनजातीय युवा हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी डाक सेवा ने चीन और हांगकांग से आने वाले पार्सलों पर रोक लगाने के फैसले को वापस लिया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने नागपुर में भारत के खिलाफ पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।